अगली आयत पे चलते हैं जो सूरत की आखिरी आयत है। और हकीकत में ये आयत नहीं बल्कि बहुत सारी दुआओं का मजमू है। सूरत अल बकरा की ये आखिरी आयत, इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, इसलिए उलमाए कराम ने इस आयत को आयत दावात कहा है। यानी एक होती ना दुआ, तो फिर दुआ से दावात, यानी बहुत सारी दुआओं का मजमू। और इस आयत को पढ़ते वक्त मुझे तो याद आ रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत की तलब के साथ ये सूरत शुरू हुई थी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पहलुओं में सिर्फ सूरत अल बकरा पढ़ने से ही हिदायत मिल चुकी होगी। और दुख और अफसोस की बात बताऊं, वो कुछ ऐसे भी होंगे और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई एक भी ऐसा हो कि जिसको सूरत अन्नास तक पहुँच कर भी हिदायत नहीं मिलेगी। ये अल्लाह का फैसला है, क्योंकि हिदायत बड़ी कीमती दौलत है। सूरत अल फातिहा में हमने पढ़ा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की बात में कि हिदायत एक हदिया है, दोनों का एक ही रूट है। गाइडेंस इज अ गिफ्ट। इंग्लिश में एक जुमला बोलते हैं, गाइडेंस डिलेट गाइडेंस डिनाइड। जो हिदायत की कॉल को डिले कर देता है, अभी नहीं सोचती हूँ, अभी तो सूरत शुरू हुई, अभी तो अरमान पूरे कर लूँ, अभी तो बड़े चाव हैं दिल में, अभी ये तो हिदायत चली जाती है। और मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि एक ऐसी विंडो जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉपअप होती है, थोड़ी देर तक अगर आप ओके ना करें ना तो वो गुम जाती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमें अब इस आखिरी आयत में दुआएं मांगना सिखाता है। याद रखिए ये आयत किस माहौल में नाजिल हो रही है, मक्की दौर का बिल्कुल आखिर। नंबर एक, हालात की शिद्दत उरूज पे नबी की जान लेने की तैयारियां हो चुकी। सताया तो था, मुआहदे भी करने चाहे, धमकियां भी दी, कोई किसी जगह कोई बात बन ना पाई। तो अल्लाह अपने नबी को मेराज के मौके पे ले गया। और यहाँ इन आयात में उम्मत मुस्लिमा को तसल्ली दी जा रही है कि गम ना करो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह बंदे को उसकी वसत से ज्यादा। हर बंदा अपनी वसत के मुताबिक ही आजमाया जाता है। ये है अल्लाह ताला के कवानीन, जो पीछे हम पढ़ते जा रहे हैं उनमें से एक कानून। हर बंदा उतना ही क़यामत के दिन पूछा जाएगा जितनी उसको नेमत दी गई। हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इंसान मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ माओं के घर जन्म दिए गए पहली बात, फिर मुख्तलिफ माहौल हम पे असरअंदाज हुए। कोई अमेरिका के एक एडवांस मुल्क में पैदा किया गया और किसी को पाकिस्तान या इंडिया के किसी गांव में पैदा किया गया। दोनों की नेमतों का फ़र्क है, दोनों के इंटरलेक्ट का फ़र्क है, दोनों को जो इर्द गिर्द के लोग पैम्पर कर रहे थे फ़र्क था। तो ये कैसे हो सकता है कि सबको कल एक ही बाट में तोला जाए। तो कहा तसल्ली रखो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं कह सकती हूँ कि ये आयत अल्लाह ताला के फजलो करम का मजहर है। हम जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह सूरत अलानाम की एक आयत में पढ़ेंगे, सूरत अलराफ या नाम दोनों में से चेक करना पड़ेगा। बहरहाल बीच की सूरतों में एक सूरत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स पर रहमत लिखी है। अदल नहीं मांगो अल्लाह का, मारे जाओगे। इंसाफ भी ना मांगो, पिस जाओगे, पत्थर के नीचे आ जाओगे। अल्लाह से उसकी रहमत मांगो। और इससे बड़ी और रहमत क्या है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर उसकी उम्र से ज्यादा बोझ नहीं डालती, तो अल्लाह भी कहते ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो करते हो उतना ही करूँगा, फिक्र नहीं करो, लेकिन जो कर सकते हो वो नहीं करते तो पूछूंगा। और जिस गुनाह से बच सकते थे और नहीं बचे सिर्फ नफ्स के गलबे की वजह से, उसको पूछूंगा। जिस्मानी कमजोरियां, जहनी कमजोरियां, हालात का बिगाड़ इंसान के नामे अमाल पे असरअंदाज होगा। जिन चीज़ों को दुनिया में हम दुख की चीज समझ जाना, ये मेरा जुमला बड़ा काबिल गौर है, अगर आप सुनेंगे तो आपको अपने बहुत सारे गमों का जवाब मिल जाएगा। दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है? बेहतरीन हालात मेरे हों, सबसे अच्छी सेहत मेरी हो, बीमार मैं ना हो, कोई जोर जबरदस्ती मेरे पे ना करे, मैं दीन का काम करने लगूं, सबके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम कुरान पढ़ के जाएं, हमारे शौहर हाथ में फूल लेके खड़े हों, हम कुरान पढ़े, हमारी सासें हमारे गले में सोने के हार डालें, चाहते तो हम यही है ना। लेकिन सुनिएगा, अगर दुनिया में जो मिला हुआ है ना इस वक्त, और इसमें से सिर्फ मुश्किलात बीमारियां दुख निकाल दिए जाएं, हम में से हर एक उम्रे हिजर पाए, फिरौन जैसी बादशाहत मिल जाए, कि कहते हैं 300 साल जिया और कभी सर दर्द ही नहीं हुआ, इसीलिए रब कोई नहीं पहचान सका, अगर ये सब ना हो तो हमारा हिसाब उससे बहुत मुश्किल हो जाए जो अब होने वाला है। कमजोरों का, जयीफों का, बीमारों का, दुखियों का, सताए हुओं का हिसाब आसान होगा। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा कि कमजोर और गरीब लोग अमीर और साहिब हैसियत लोगों की निस्बत 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे एयरपोर्ट पे खड़े लोग अभी अपने बैगेज तुलवा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गठलियां खुलती बंद होती हैं, और एक बंदा आता है और ब्रीफ केस उठाया व बोर्डिंग पास लेके आपके पास से गुजर जाता है। तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हमने इस सूरत की आयत नंबर 186 में एक अल्लाह का फैसला सुना था, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझको पुकारे, शर्त एक है, फल यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो भी तो मेरी दावत को सुने, कबूल करें, वल यूमिनो भी, और मुझ पर ईमान लाए। क्या पता चला? दो तरफा बात है, तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी मानता हूँ, तुम मेरी मानोगे मैं तुम्हारी बहुत मानूंगा, और जब तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। पढ़ो 40 40 साल तक आयत करीमे, सवा सवा लाख दफा पढ़ो, दुआएं मांगो, काबा में जाके पर्दे को थाम के दुआएं मांगो, लेकिन अल्लाह तुम्हें पकड़ नहीं लेगा, अल्लाह की पकड़ आएगी। सिर्फ एक चीज है जो हम सबको बचा रही है, और वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा और कतब अला नफ्सिही रहमा। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, हम जिन चीजों को सोच ही नहीं सकते अल्लाह की नजर उन पे भी होती है, इसलिए गम ना करें, अल्लाह ताला आपके और मेरे ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अब जब ये बात सुनी तो फिर साथ ही सूरत तल्लाक की एक आयत भी याद आ गई। यहाँ तो क्या कहा गया ना, वस आहा, उसकी वसत। अब हर बंदा कहेगा वसत क्या होती है, इसकी भी डिटेल होनी चाहिए। तो मैं सूरत तल्लाक की आयत सिर्फ आपको इसके रेफरेंस में दे देती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु, किसी को अल्लाह तकलीफ नहीं देगा, यानी उधर भी तकलीफ देने और आजमाने की बात है, इल्ला मा आताहु, जो उसको दिया बस उसका हिसाब होगा। तो याद रखिए कि हम सबको इस बात में फिक्र करनी है कि हम किस तरीके से अपनी वसतों के मुताबिक काम करें, दूसरों को नहीं पता चलेगा, अल्लाह को पता चलेगा। और ये है वो कानून जिसकी बुनियाद पे हम अपनी किसी क्लास में किसी का रिजल्ट नहीं अनाउंस करते, हर एक की वसत फर्क है, कोई पहले से पढ़ के आए होंगे, किसी ने कभी इस बारा भी नहीं पकड़ा, कोई माशाल्लाह एमए किया होगा, किसी ने मास्टर्स किया होगा, और किसी ने पांचवी नहीं पढ़ी, कौन आपको नंबर दे? किसके सामने हम धूम मचाएं मेंबर से जाके कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, इतने साल हो गए, आज तक कोर्सेज भी पूरे हुए, सूरतें भी पूरी हुई, लेकिन कभी किसी की ग्रेडिंग नहीं बताई, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते। आप कहते हैं 10 दफा पढ़ती हूँ तर्जमा याद ही नहीं होता, दूसरा एक दफा पढ़ता है याद हो गया, वो तो 100 में 100 ले जाएगा, आपके हो सकता है ग्रेस मार्क्स भी ना आए पूरे। तो क्या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसलिए मैं आप सबको भी कहूंगी और खुद को भी कि अपनी वसतों को पहचाने। अब इसका अपोजिट एंगल भी लीजिए, जहां इस आयत में तसल्ली है वहां यहां धमकी भी है। कि तुम अपनी वसअतों को पहचानो, अपनी स्किल्स को देखो, अपने इंटेलेक्ट को देखो, अपनी जहानत को देखो, कितना सुकून है तुम्हारे पास, कितना वक्त है तुम्हारे पास, बिजली तुम्हारे पास नहीं जाती, गम तुम्हें नहीं, हड़तालें तुम्हारे पास नहीं होती, गोलियां तुम्हारे पास नहीं चलती। गोया कि हम लोग जो बाहर के मुल्कों में इतनी पुरसकून और पुरतईश जिंदगी बसर करते हैं, लग्जरियस लाइफ, उनका हिसाब किसी ऐसी जगह में जहाँ पता ही नहीं है कि थोड़ी देर में होने के वाले, उनकी निस्बत सख्त हिसाब होगा। तो बड़े शौर के साथ इंसान अपने पलड़े में नेमतों को डाले, क्योंकि हिसाब बहुत सख्त है। फिर उसके बाद आगे फरमाया, जब इंसान ये सुन लेता है कि अल्लाह ताला वसत से ज्यादा तू नहीं आजमाएगा और तूने ये बात कर दी, तो अल्लाह ताला कहते लहा मां का सबत उसके लिए है। हा क्या है इधर? नफसन, हर नफ्स। मां का सबत जो उसने कमाया, वह अलैहा और उसके खिलाफ है, यानी उसके ऊपर है, उसके अगेंस्ट है, मकतसबत जो उसने कमाया। लफ्ज़ी वज़ाहत में फर्क थोड़ा सा बताया था, उसी में से एक बात के कसबत अच्छा कमाना और एक तसबत बुरा कमाना। और शुरू में क्या है? लहा उसके लिए, ली मैंने फॉर उसके लिए, फॉर हिम और फॉर हर, और अलैहा अगेंस्ट हर। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको एक उर्दू का जुमला बोल के दिखाती हूँ तो आपको ये फर्क समझ आना चाहिए। आप किसी को कहते हैं कि आपके लिए $100 है, ये $100 आपके लिए है। कोई भी आपसे कहता है कि आपके लिए $100 है, और कोई आपको कहता है जी आप पर $100 है, फर्क समझते हैं? पहले में आपको मिलने वाले थे, दूसरे में आप देनदार हैं। यही है लहा और अलैहा में खबर ये दे दी कि दुनिया में जो करके आते हो, जो करते हो, सब अल्लाह को पता है कौन किसने अल्लाह को देने हैं और किससे अल्लाह ने लेने हैं, तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। अब बंदा अपनी बेबसी को महसूस करता है, कौन खुश हो, कौन खुशियां मनाए। बंदा पुकारता है कि अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं, ला तुआखिज़ना इन नसीना, अगर हम भूल जाए, औ अख्तवाना या हम खता करें। दो लफ्ज़ हैं, ए अल्लाह हमें ना पकड़ना, हमारी पकड़ ना करना, किस पे जो हम भूल जाएं। ये उर्दू में बिल्कुल ऐसे हैं कि अल्लाह हमारी भूल चूक को माफ कर दे। ये लिखे दोनों लफ्ज, भूल और चूक। भूल क्या है? नसीना। और चूक क्या है? अख्तौना। फर्क देखिए क्या दोनों का। भूल क्या होती है? भूल गए, ऐसे ही है ना। कोई भी काम का वक्त था, अच्छे काम का वक्त था, भूल गए, याद ही नहीं रहा। और चूक क्या होती है? कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। हम तो नेकियों के कामों में भी गलतियां कर देते हैं बेशुमार, अल्लाह ही माफ करेगा हमारी, ठीक है? तो भूल और चूक को माफ कर दे। और इंग्लिश में अख्ताना को आप मिस्टेक कह लें, खता तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी कि सही नहीं ले सके। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीन मिन कबलिना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पे डाला। ये कौन सा बोझ था? तेरे रास्ते में अमल करने का। मक्की दौर के पिसे हुए लोग हैं, कोई उनको नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहा, जान के लाले पड़े हुए हैं। तो अल्लाह बंदों को दुआ सिखाता है कि देखो अल्लाह ही से दुआएं मांग लो कि अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल के जो लोगों को दीन के काम करने में पहले डाले गए। एक मौके पे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी हद हो गई, अब तो बहुत थक गए, बहुत जुल्म हो रहे हम पे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग जल्दी करते हो, तुमसे पहले के तो जिस्म आरों से चराए जाते थे और तुम तो बहुत जल्दी करते हो। तो लिहाजा ए अल्लाह हम पे पहलों वाला बोझ ना डाल। और लफ्ज यहाँ देखे फिर दो आ रहे हैं, हमल और इसर। हमर कहते हैं हल्के बोझ को, वो बोझ जो इंसान लेके चल सके, ये माँ के पेट का बोझ प्रेगनेंसी हमल होता है। लेकिन जब वो बोझ इतना भर जाए कि उठा ही ना सके, कि पुश्त पे रखना पड़े, तो उसको इसर कहते हैं। और यही लव सूरत अल अराफ की आयत 157 में आता है नबी सल्लम के नाते से, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि उन्होंने उनके वो बोझ उनसे उतार दिए और वो तौक जो उन्होंने अपनी गर्दनों पर डाले हुए थे। तो लिहाजा शरीयत लोगों ने मुश्किल कर ली थी। ये कौन से बोझ थे? दो तरह के बोझ थे, नोट कर लीजिए। एक तो पहली उम्मतों पे शरीयत मुश्किल थी। कैसे मुश्किल थी? उनका रोजा बड़ा लंबा था, 24 घंटे का रोजा था। फिर इसी तरह आपको पता है कि जब किसी कपड़े पे नजासत लग जाती थी ना, तो उसको काटना पड़ता था, धोने से नजासत नहीं उतरती थी। इसी तरह जकात का 1/4 हिस्सा था उनका, हमारा कितना? 2.5, और उनको 1/4 यानी 25% जकात देनी पड़ती थी अपने माल में। फिर आप देखिए, हम देख चुके बनी इसराइल के नाते से कि बछड़े की पूजा की तौबा की कबूलियत के लिए फक्तुलु अनफुसकुम, कत्ल तक करवा दिया गया उनसे, ठीक है। फिर इसी तरह यहूद के लिए आता है कि उनको कच्चे गोश्त में से चर्बी निकालनी पड़ती थी, यानी गोश्त हलाल था, चर्बी हराम थी। कितना मुश्किल है, कितनी को निकालते होंगे, लेकिन मुश्किल था। अल्लाह कहता है कि तुम उम्मते मुस्लिमा खुशियां मनाओ कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने वो बोझ आसान कर दिए। तो एक चीज क्या हो गई, आपने पीछे पढ़ा कि पहले औरत की इद्दत 1 साल की थी, इस्लाम में सिर्फ 4 माह 10 दिन की रह गई, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक दूसरे किस्म के बोझ का भी यहाँ तذکرہ किया, और वो क्या है कि जो इनके उलमा ने खुद डाल दिए थे अपनी कौमों पे इज्तिहाद के नाम पे। आज भी बास दफा दीन की जब बात होती है ना, तो लोग इस तरह की बातें करके लोगों के लिए मुश्किल करते हैं। मसलन सर से दुपट्टा अगर आपका उतर गया तो वजू टूट गया, वजू करना है तो उसके लिए बैठना शर्त है, खड़े नहीं हो सकते। बाथरूम में भी जाना है तो सर पे दुपट्टा लेके जाना है। और इसी तरह की कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, पीरियड्स के नाते से औरतों के जहन में ख्याल आते हैं। तो बास लोग दीन के नाम पे जब कोई काम करते हैं तो उसको भी बहुत मुश्किल कर लेते हैं। सर से दुपट्टा उतर गया तो क्या होगा? यदि इवन इस वक्त देखिए, मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ ना, और आप पढ़ रहे हैं, मैं सारा भी दुपट्टा उतार के साइड पे रख दूँ तो कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन ये हम रिस्पेक्ट करते हैं हम अपने दीन के इस्तकबाल के लिए। लेकिन हराम और हलाल का ये मसला नहीं है। लेकिन बास दफा हम इस मौके पे ऐसे जगहों में, जगहों से मुराद ये कि कोई ऐसा मसला हो तो उसमें तो हम एक एक छोटी छोटी चीज पे बात करते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए कोई नहीं सोचता। बाथरूम में जाते हुए दुपट्टा लेना जरूरी है बास के ख्याल में, लेकिन बाहर जाते हुए कोई नहीं है। अजान होती तो कितनी जल्दी लोग झट से सर पे दुपट्टे लेते हैं, निकाह पढ़ा जाता है शादियों के मौकों पे, जहां अरबी सुनी वहां सर पे दुपट्टा ले लो और बाहर निकाल दो तो कुछ नहीं। और दीन पे आते हैं तो फिर पूरा वक्त ही, सारा वक्त ही कहते हैं कि बस अब घरों में भी उसी तरह रहना है जैसे बाहर है। हमारे बाहर और अंदर में फर्क ही नहीं रह गया, या बाहर भी ऐसे ही फिरते हैं जैसे अंदर फिरते हैं, या फिर जैसे बाहर फिरते हैं वैसे घर में भी फिरने लग जाते हैं। तो हमारा दीन बैलेंस दीन है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती रखी है। तो इसलिए कहा कि अल्लाह हम पे इतनी मुश्किलें ना डाल। और अगर आप अपने इस कोर्स को जहन में लाएं, जब इंसान ये कोर्स शुरू करता है ना, तो बहुत सारे गम होते हैं। आप में से बहुत सारों को अंदेशे थे ना, नहीं कर सकूंगी, कुछ को अभी भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल अब दिन ब दिन आसान लग रहा है, लेकिन बाकियों को फिक्र है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है गम ना करो। जिस तरह ये सूरत बकरा पूरी हो गई है ना, इसी तरह एक दिन सूरत नास होगी और तुम्हें एहसास ही नहीं होगा। अल्लाह ताला आसान कर देता है, चलेंगे तो आसान है ना। देखिए, एक लफ्ज है मुश्किल से होना और एक है वुस्सत से बाहर होना, फर्क है ना। जवान औरत पर्दा करेगी, बूढ़ी हो गई, कंधे कमजोर हो गए, अट्रैक्शन खत्म हो गई, जज्बात खत्म हो गए, क्या उस चादर को उतार के हल्का भी कर लो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला के साथ कोई ट्रिक ना करो, उसको सब पता है। बस लोग वुस्सतों का बहाना करके फिर दीन ही छोड़ देते हैं, पूछे जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस चीज की फिक्र ना करो कि तुम दीन के रास्ते में आजमाए जा रहे हो, ये फिक्र करो कि ऐसा ना हो कि आजमाइश भी आ जाए और तुम फिर पकड़े जाओ। ये कैसे होता है? यहाँ एक जुमला बोलूंगी बड़े शौर से, लिखना चाहे तो लिख ले। बस दफा मजबूरियों के पर्दे में हमारी मुनाफ़कत छुप जाती है। अंदर से निफाक होता है, ऊपर से कोई मजबूरी डल जाती है, शौहर मना कर देते हैं, नहीं पढ़ना, नहीं सीखना, नहीं ये काम करना। कहीं बीमारी पर्दा डाल देती है हमारे निफाक पे, और वाकई हम बीमार होते हैं, लेकिन शुक्र करें कि हम बीमार हैं, क्योंकि अगर हम बीमार ना होते तो हमने फिर भी नहीं काम करना था। हर बंदा खुद से पूछे, मैं कितना हूँ? रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, ए हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की हम में ताकत नहीं वो हम पर ना रख, हम पर ऐसी मुश्किलें ना डाल के चली ना सके। बस इतनी आजमाइश भेज के बस उसमें पूरे उतरे। ऐसा ना हो कि इस हक के रास्ते से हमारे कदम लड़खड़ाने लगे। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे। वरहमना, और हम पे रहम फरमा, क्योंकि अंता मौलाना, तू ही तो हमारा मौला है। कितना प्यार है, जैसे बच्चा माँ से कहता है अम्मी किससे मांगो। कहते हैं कि एक बच्चा था तो उसने अपने बाप को बड़े लाड़ से कहा कि अब्बू मुझे साइकिल ले दे। अब्बू बेचारा काम से आया हुआ था, थक गया, थका होगा बेचारा। डांट दिया बच्चे को, चलो भाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं मेहनत करता, इतनी मेहनत से कमाता और तुम्हारे मामले नहीं खत्म होते। खैर, कहते हैं कि बाप बच्चा अंदर गया तो रोने लगा। थोड़ी देर बाद बाप का जब गुस्सा दूर हुआ कि जाके देखूं क्या कर रहा है, तो देखा कि बच्चा जो था ना वो हिचकियां ले रहा था। कह रहा था कि अब्बू मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। अंता मौलाना, तू हमारा मौला। और लफ्ज मौला कितने ही मानों में आता है, अल्लाह के लिए भी बोलते हैं औरों के लिए भी बोलते हैं। जिस गुलाम को आजाद करता है कोई वो उसका मौला बन जाता है। इसी तरह विलायत के बहुत काम है जो आगे जाके बात करेंगे। फंसुरना अलल कौम अल काफिरीन, और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। कुफार के मुकाबले में मदद क्यों? क्योंकि अब हिजरत करीब है, मक्का से मदीना जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस रास्ते की मुश्किलात इतनी बढ़ जाएं कि फिर मैं दीन ही छोड़ दूं। एक होता है मुश्किल चली जाए, कब? एक होती है मुश्किल कौन सी? जब आप उस दीन को छोड़ देते हैं। देखिए ना, एक काम करने की वजह से कोई आपसे नाराज है, जब आपने वो काम छोड़ दिया तो मुश्किल चली गई। एक वो मुश्किल होती है जो उस काम के अंदर और काम करने से हल होती है। लिखे फर्क मुश्किल है थोड़ा सा समझना, लेकिन लिख लें शायद फायदा हो। हम नेकी का कोई काम करते हैं, आप अपने ऊपर लें, आप कहीं वॉलंटियर करती हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपके घर वाले आपसे नाराज हैं, वो कहते हैं धमकियों पे आ जाते हैं, खबरदार अब ये हुआ वो हुआ, आप कहती हैं अब छोड़ो क्या करना है, कोई नहीं सोचते कि इसका कोई अच्छा तरीका भी है। आप वो काम छोड़ देते हैं, अब क्या हुआ? आपके ख्याल में आपने वो उजर दूर कर दिया जिसकी वजह से वो हालात बिगड़े। बाहर आप समझते हैं कि बहुत अच्छे हालात हो गए, एक सूरत। अब दूसरी पे आइए, आप नेकी का कोई काम करते हैं, घर में ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। अब क्या हुआ? घर के माहौल में टेंशन आई, स्ट्रेस हुआ। अब आप क्या करते हैं? काम नहीं छोड़ते बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं, हिकमत मांगते हैं, थोड़ा सा सब्र और हौसला करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। जब आप उस काम पे जम जाते हैं ना, वही नतीजा निकलेगा जो आपका उसको छोड़ने का निकल रहा था, लेकिन दोनों नतीजों में बड़ा फर्क है। आप किसी को खुश करने के लिए जब नेकी का काम छोड़ देते हैं ना, तो दूसरा बंदा वक्ती तौर पे खुश होता है, उसके बाद फिर आपको एक और चीज पे तंग करेगा। दिन ब दिन आपके लिए दूसरा काम भी मुश्किल होगा, और बाज़ औक़ात तो बाज़ लोग इस पे भी गुस्सा करते हैं कि अब इस वक्त तुम नमाज क्यों पढ़ रही हो, मेरी रोटी का वक्त है। लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छे तरीके से मामला, फहमी के साथ मामला करते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि वो बंदा एक दफा दो दफा फिर अखीर वो सब्र करता है, वो कहता है इसने नहीं छोड़ना, और उस काम की खैर भी दिखती है। जब खैर दिखती है ना, तो फिर अल्लाह थोड़े दिनों में इर्द गिर्द वालों और घर वालों को भी आपका मुआविन बना देता है। पहली सूरत में आप भी पलटे तो घर वाले तो खुद ही पलट गए, कैसे बुलाएंगे उस चीज की तरफ जिसको आप खुद नहीं कर रहे। और दूसरी सूरत क्या है कि वो कहेंगे नहीं इसने नहीं जाना, अब ये नहीं पलटेगी, और देखो फायदा ही हो रहा है ना, खैर ही की बात है ना, तो लिहाजा फिर वो भी आपके पीछे आते हैं। और जो बंदा जन्नत का रास्ता देख ले, वो कभी दुनिया को जन्नत बनाने के लिए पीछे नहीं पलटेगा। और इस दुआ में अल्लाह ताला ने हम सबको ये सिखा दिया कि तुम सब दीन की आजमाइशों और मुश्किलों के बावजूद अगर चलते रहोगे तब मदद आएगी। आज आप बहुत खुश हैं सूरत बकरा के पूरा होने पे, ठीक है, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन याद रखिएगा एक बात को, और वो क्या है कि जब आप इस सूरत के बाद दिन ब दिन अब आगे जाएंगे ना, तो बाहर की आजमाइशें कम होती जाएंगी, अंदर की बढ़ती जाएंगी। आप में से अगर किसी ने हिफ्ज किया हो ना, तो वो मेरी इस बात को समझेगा। आप जब अभी सिर्फ 30वें पारे की पहली एक दो सूरत याद करते हैं ना, फौरन याद हो जाती है यकीन करे मैंने एक मौके पे शुरू किया तो मैं इतना आसान है ये श्लोक, पता नहीं क्या कहते हैं। पहली सूरत आसान, दूसरी आसान, और मुश्किल पता कब होती है? जब आप आधा स्वर याद कर लेते हैं, गलती लग जाती है। इज समान फतरत था या इज समान शक्कत था, उसके बाद ये था तो उसके बाद ये था। तो जितना ज्यादा आगे जाते जाते हैं ना, उतनी चीजों में शुभा पड़ता जाता है। अगर आपने अपने अंदर को बांध लिया ना, तो बाहर वाले खुद ही बन जाएंगे। और अब देखिए कि हमारे पास कोई च्वाइस है, कोई बताए हम में से, हमारे पास इतनी च्वाइस है कि हम एक और नई जिंदगी ले लें। ये जिंदगी पहला और आखिरी चांस है। इफ यू लूज इट, लूज इट। ये आखिरी फ्लाइट है, इसके बाद अब कोई फ्लाइट नहीं है जिसमें बैठकर हम जन्नत में जा सके। इसका फैसला तो वहां जाके होना है। इसलिए आज को बहुत ज्यादा खुशी का मौका नहीं है, जवाबदही का मामला। नेमत बढ़ती है ना तो हिसाब भी बढ़ता है, अपने अमल को देखना है। और अगर अभी हम इस सफर को नहीं कर सके, मिसाल है कि आपने सूरत बकरा को संजीदगी से नहीं लिया, कभी आते थे कभी नहीं, जब बस सोचा कि ठीक है देखेंगे, तो फिर ये एक खुशी का मौका भी है। कोई बात नहीं, सूरत बकरा नहीं पढ़ सके, सूरत आले इमरान पढ़ लेंगे, दोनों बहनें हैं। कल इंशाल्लाह इसका फ़र्क होगा। आप में से जो गेस्ट हैं, मोस्ट वेलकम। जैसे आज आप आएँ, आप रोज़ आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से आप देखेंगे कि कल जब हम सूरत आले इमरान को शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा, अब सूरत अल बकरा की बहुत सारी बातें हमें समझ आने लगी हैं। कुछ चीज़ें इसमें भी रह जाती हैं, लेकिन वक्त जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितना भी होगा वो थोड़ा ही होगा, लेकिन हमने इसको बस पूरा कर दिया। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम सब को इसके पढ़ने के बाद ईमान, तकवा, मोहब्बत, वो सब कुछ दे दें। और आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्ला खैर। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा वा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما یا اللہ ہم نے یہ جیسا تیسا بھی پڑھا اس کو قبول فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم الهمني رشدي واعصمني من شر نفسي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہم سب ساتھیوں کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں آن لائن پہ گھروں سے جو بھی جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں یا بعد میں سنیں گے یا اللہ ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ہم نے اس قرآن کے سفر کو تیری رضا کے لیے کیا ہدایت کے لیے کیا یا اللہ اگر تجھے ہمارا یہ عمل پسند ہے تو ہماری جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا دے یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا یا اللہ ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے چشمے بہہ رہے ہوں اور ہم اس سے محروم رہ جائیں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے جسمانی ذہنی روحانی ہر طرح کی صحت عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے غلبے سے بچا یا اللہ ان طالب علموں کو تکبر سے بچا اکڑ سے بچا فخر سے بچا ریاکاری سے بچا اپنے آپ کو کچھ بننے سے بچا یا اللہ ان کو عاجزی دے دے یا اللہ ان کو عاجزی دے دے یا اللہ ان کی آواز میں دھیما پن پیدا کر دے یا اللہ عمل کی فکر لگا دے یا اللہ جو بھی اس کام میں معاون ہے مددگار ہے ان کی مدد فرما یا اللہ یہاں اور وہاں جہاں بھی آن لائن پہ آن سائٹ میں یا اللہ جو کچھ بھی ہے یا اللہ تو اس میں برکت ڈال دے یا اللہ لوگوں کو تو ہماری خامیاں پتہ بھی نہیں چلتی یا اللہ تو ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے یا اللہ تو ہماری خامیوں سے درگزر فرما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہمارے جو ریسپیکٹیبل گیسٹ ادھر بیٹھے ہیں ان سب کے بھی دلوں کی حاجات پوری فرما. یا اللہ جن کی جو مجبوریاں ان کو دور کر دے. یا اللہ ہم کسی کو محروم نہ رکھنا. یا اللہ اس جگہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس جگہ کو تو نے چھنے, اس کو قیامت تک کے لیے چھنے رکھنا. یا اللہ تیرے بندوں کا شکر ادا کرنا بھی تیرے نبی ہی نے سکھایا. یا اللہ بہترین طریقے سے اس کو اس کی بہترین جزا دے. یا اللہ جو بھی کمی بیشی ہے اس کو معاف فرما دے. یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی ساتھی اس پروجیکٹ میں حصہ ڈال رہے ہیں, یا اللہ ان کی امانتوں کی حفاظت کی توفیق دینا. یا اللہ ضائع ہونے والی اور باطل ہونے والی نیکیوں سے بچا لے. یا اللہ ناروے میں بھی ہمارے جو ساتھی سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی بھی نیک تمنائیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما. جو دنیا میں ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ اس قرآن کو ہماری تنہائیوں کا ساتھی بنا. یا اللہ اس دنیا میں بھی یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں رہے, اور یا اللہ ہم جب قبر میں جائیں تو یہ ہمارا دوست اور رفیق بن جائے. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہمیں اپنا قرب دے, اپنی معرفت دے, اپنی رضا دے. یا اللہ جو جس چیز سے محروم ہے اس کو اپنی رحمت سے عطا فرما, اور جس کو نعمتیں دی ہیں اس سے اس نعمت کی بہترین قدردانی کروا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ ہمارے ملک پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ وہاں کے مسائل کو حل کر. ہمارے بھائی بہنوں, رشتہ داروں اور امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما. ان کو بے حساب اجر عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے سامنے عاجز بنا. ان کا حق ہم نہیں دے سکتے, لیکن یا اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. جو دنیا میں ہیں یا اللہ ان کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.